पुरुष रूप में भगवान का जो कार्य है वो सही रूप से समझने के लिए सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि वो कौन है। और ये अगर पहचान लेते हैं तो तब कोई समझने में कोई असुविधा नहीं हो सकता है। ये है भगवान के लीला पुरुषोत्तम का कार्यवली। तो 15 अध्याय में वर्णन हुआ है धेनुकासुर वध। धेनुक का मतलब क्या है? धेनुक का मतलब गधा, गधा। तो एक असुर कंस का एक मित्र जो बहुत शक्तिशाली था, अर्थात साधारण शक्ति नहीं, उसको बहुत सारे योग शक्ति था। ये सिद्ध योगी था ये धेनुकासुर। उस योग शक्ति के द्वारा वो अपना रूप बदल सकता था। वो एक गधा का रूप ले लिया। एक गधा का रूप क्यों लिया? सोचा कि मैं गधा का रूप में जाके कृष्ण को मैं हत्या कर दूंगा, कृष्ण को मैं संहार करूंगा। तो धेनुकासुर ऐसे आया था। उसका किसने धेनुकासुर का वध किया था? बलराम ने। इसका वर्णन इस अध्याय में हो रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ अपना कौमार बिताकर पोगन अवस्था में प्रविष्ट हुए। अच्छा, कौमार अवस्था, कौन से अवस्था को कौमार कहा जाता है? 5 साल तक ये है कौमार और 6 से 10 साल तक है पोगंड। तो और 11 से 15 साल तक है कैशोर। तो कृष्ण का लीला इस 3 भाग में है, कौमार लीला, पोगंड लीला, कैशोर लीला। कौमार लीला हुआ था ब्रह्म विमोहन लीला तक। ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने मोहित कर दिया। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को पहचाना नहीं। तो 5 साल की उम्र में कृष्ण का ये लीला हुआ था, जिसका वर्णन इसके पहले अध्याय में, 14वें अध्याय में जिसका वर्णन हो चुका है। अब 15 अध्याय में कृष्ण का पोगंड लीला का शुरू हो रहा है। मतलब 5 साल के बाद 6 साल से, 6 साल की उम्र से जो लीलाएं हो रहा है। कब तक चलेगा ये लीला, पोगंड लीला? 10 साल तक। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ अपना कौमार बिताकर पोगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। ये अवस्था 6वें वर्ष से 10वें वर्ष तक रहती है। तब सभी ग्वालों ने परस्पर मंत्रणा की और वे इसके लिए राजी हो गए कि जो जो बालक 5 वर्ष के हो, 5 वर्ष के हो गए, उन्हें चरागाह में गोवे ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। 5 साल तक बच्चे लोग को, जब बच्चे रहते हैं तो 5 साल तक उसको बछड़े को देखभाल करने का जिम्मेदारी दिया जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, बड़े गाय को संभालना मुश्किल होगा, तो इसलिए बछड़े को उससे ट्रेनिंग शुरू होता है, अप्रेंटिस। और 6 साल जब हो जाते हैं तब बड़े गाय को चराने को उत्तरदायित्व दिया जाता है, उसको जिम्मेदारी दिया जाता है। उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपने चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि पवित्र की। ग्वालों तथा बलराम के साथ कृष्ण अब गौओं को आगे किए हुए फूलों, साग सब्जियों तथा घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में अपनी बंसी बजाने लगे। वृंदावन के वन भक्तों के विमल मन के समान स्वच्छ था और मधुमक्खियों फूलों तथा फलों से लदा था। उसमें चिड़िया चहक रही थी और उसके स्वच्छ जल वाले सरोवर समस्त श्रम को हरने वाले थे। वहां सदा सुगंधित वायु बहती रहती थी जिससे मन तथा शरीर प्रफुल्लित हो जाते। कृष्ण अपने सखाओं तथा बलराम सहित वन में प्रविष्ट हुए और अनुकूल वातावरण देखकर जी भरकर आनंद लुटा। कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष फलों से लदे हैं और नई नई ठहनियां नीचे आकर पृथ्वी का स्पर्श कर रही हैं, मानो वे उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनका स्वागत कर रही हैं। वे वृक्ष फूलों तथा फलों के इस तरह के भाव से अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी इच्छाएं जानकर हंसने लगे। जब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से इस प्रकार बोले, हे भैया, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं और देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। देखते नहीं कि ये फलों से लदे वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए नीचे झुके हैं। ऐसा प्रतीत होता कि मानो वृक्ष का रूप धारण करने के कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुत वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं है। आपने पूर्व जन्मों में निर्गुण विचार रखने के कारण इन्हें इस जड़ रूप में रहना पड़ रहा है। ये एक बहुत बहुत गंभीर विचार है। कृष्ण ने बलराम को कह रहे हैं कि जो अव्यक्त रूप से आध्यात्मिक चिंतन करते हैं, जो निर्गुण विचार रखते हैं, उनको इस जड़ रूप प्राप्त होना पड़ता है। अर्थात जो आध्यात्मवादी निर्गुण का ध्यान करते हैं, निराकार का नहीं, भगवान को चिंतन ध्यान करते हैं जो लोग, उनको वृक्ष रूप में वृंदावन में स्थान प्राप्ति हुआ है। भगवान को विरोधी बनकर नहीं, भगवान के अनुकूल रहकर जो ऐसे भगवान को ध्यान में मग्न रहते हैं या भगवान को निर्विशेष रूप का ध्यान करते हैं, उनको वृक्ष रूप में वृंदावन में स्थिति हुआ है। किंतु अब इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है। यद्यपि उन्होंने निर्गुण का ध्यान करते थे पहले, बल्कि अब वृंदावन में इस स्थिति प्राप्त होने के पश्चात उनको आपको दर्शन हो रहा है। तो ये आपका दर्शन जो है, ये तो निर्गुण नहीं है, ये सविशेष स्वरूप दर्शन हो रहा है। आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है और अब वे आपके सान्निध्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सामान्यतया वृक्ष तमोगुणी जीव हैं, निर्विशेषवादी चिंतक उसी तमस में अंधकार में रहते हैं, किंतु आपकी उपस्थिति का पूरा लाभ उठाकर उसे समूल नष्ट कर देते हैं। मेरे विचार से जो भौंरे आपके चारों ओर भनभना रहे हैं, वे पूर्व जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। वे आपके साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपसे उत्तम तथा वत्सल स्वामी और कौन हो सकता है। I was just wondering, the English translation, you have the English book? Yeah, okay. आप परम तथा आदि भगवान हैं और ये भौंड़े हर क्षण कीर्तन करते हुए आपके यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार से इनमें से कुछ अवश्य ही ऋषि तथा आपके भक्त होंगे और उन्होंने भौंड़ों के रूप में आपका वेश बदल लिया है, अपना वेश बदल लिया है, क्योंकि वे एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। हे भैया, आप परम पूज्य ईश्वर हैं, जरा देखो तो किस तरह ये मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। सारे मृग जिसका आचरण गोपियों के समान है, आपका उसी प्यार के साथ स्वागत कर रहे हैं। और इस वन में रहने वाली कोयले आपका अत्यंत हर्ष के साथ स्वागत कर रही हैं, क्योंकि उनके घरों में आपका प्राकट्य अत्यंत मंगलकारी है। यद्यपि वे सब पशु तथा वृक्ष हैं, तो भी ये वृंदावनवासी आपका गुणगान कर रहे हैं। वे आपका स्वागत अपने समर्थ भर करने के तैयार हैं, जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुषों को स्वागत करते हैं। जहाँ तक यहीं की भूमि का प्रश्न है, वो इतनी पवित्र तथा भाग्यशाली हैं कि इस पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह बने हुए हैं। इन वृंदावन वासियों के लिए स्वाभाविक है कि आप जैसे महापुरुष का इस प्रकार स्वागत करें। लताएं तथा वृक्ष भी आपके पाद पद्मों का स्पर्श पाकर धन्य है, और ये छोटे छोटे वृक्ष अपनी ठहनियों से आपके छूकर कृतकृत हैं। पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती हैं, क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं। इन सबसे ऊपर ये ब्रजांगनाएं या गोपियां हैं, जो आपके सौंदर्य से मोहित होकर धन्य हैं, क्योंकि आप अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन करते हैं। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों ही जमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गायों समेत ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते। ये बालक गाते भौंड़ों की गुनगुन की नकल उतारते और पुष्पहारों से विभूषित कृष्ण तथा बलराम के साथ साथ चलते। घूमते हुए ये बालक कभी कभी सरोवरों में तैरते हंसों की बोलियां बोलते, या जब वे किसी मोर को नाचने देखते तो वे श्री कृष्ण के समक्ष उसका अनुकरण करते। कृष्ण भी उनकी गर्दन हिलाते और नाचने का सांग भरते हुए अपने मित्रों को हंसा देते। कृष्ण जिन गौओं को चराते थे, उनके अलग अलग नाम थे और वे उन्हें दुलारवश उन्हीं नामों से पुकारते। कृष्ण को पुकारते सुनकर वे गौए रंभाती हुई तुरंत दौड़ती और ग्वाल बाल इस आदान प्रदान पर भरपेट हंसते। वे विभिन्न प्रकार की पक्षियों को धनियों का अनुकरण करते, जिनमें से चकोर, मोर, कोवल तथा भरद्वाज प्रमुख थे। कभी कभी दुर्बल पशुओं को सिंह तथा चीते की आवाज सुनकर दौड़ते देखकर कृष्ण तथा बलराम सहित सारे बालक भी उन पशुओं के पीछे पीछे दौड़ पड़ते। जब वे कुछ थक जाते तो बैठ जाते और बलराम अपना सिर किसी बालक की गोद में रख देते और कृष्ण तुरंत बलराम की पाँव दबाने लगते और कभी कभी ताड़ का पंखा लेकर बलराम के ऊपर झलते, जिससे सुखद हवा निकलने पर उन्हें थकान से कुछ राहत मिलती। कभी कभी बलराम के विश्राम करते समय बालक नाचते या गाते और कभी कभी वे कुश्ती लड़ते या फिर कूदते फांदते। जब बालक इस प्रकार व्यस्त होते तो कृष्ण भी उनके साथ हो लेते और उनके हाथ पकड़कर उनकी संगति का लाभ उठाने या उनके कार्यों की प्रशंसा करके हंसते। जब कृष्ण थक जाते तो वे किसी बड़े वृक्ष के नीचे या किसी ग्वाल बाल की गोद में लेट जाते। तब कुछ बालक आकर उनके पांव दबाते और पत्तियों से बनाए गए पंखे से हवा झलते। कुछ प्रतिभाशाली बालक उन्हें प्रसन्न करने के लिए मीठी तान में गाना गाते। इस तरह शीघ्र ही उनकी थकान दूर हो जाती। भगवान श्री कृष्ण जिनके पाव लक्ष्मी जी दबाती हैं, अपनी अंतरंग शक्ति का विस्तार करके एक ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ग्वाल बालों के साथ मिलकर उनके साथ देते। किंतु एक ग्रामीण बालक की भांति प्रकट होने के अतिरिक्त ऐसे अवसर आते रहते जब वे अपने को श्री भगवान सिद्ध कर देते। कभी कभी लोग आपके अपने को भगवान बताकर अबोध लोगों को ठगते हैं। वे केवल ठग सकते हैं, ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली मित्रों के साथ अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें अपनी ईश्वरीय अतिमानवीय शक्ति को प्रकट करने का एक अन्य अवसर प्राप्त हुआ। उनके परम मित्र सुदामा, सुबल तथा स्तोक कृष्ण ने उन्हें तथा बलराम को अत्यंत प्यारवश इस प्रकार संबोधित किया। हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारे भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ हैं, तुम दोनों सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों इस स्थान के निकट ही तालवन को चलकर देखोगे? ये वन तार के वृक्ष से पूर्ण है और सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। इस फलों में से कुछ गिर रहे हैं और कुछ वृक्ष में ही पककर लगे रहे। वो अत्यंत रमणीय स्थान है, किंतु महाअसुर धेनुकासुर के कारण वहां जाना अत्यंत कठिन है। कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, ये असुर एक गधे के रूप में वहां रहता है और उसके साथ वैसा ही रूप धारण करके अन्य असुर रहते हैं। वे सब के सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन है। भाइयों, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन असुरों को मार सकते हो। प्राण भय से वहां अन्न कोई नहीं जाता, यहां तक कि पशु भी नहीं जाते और वहां एक भी पक्षी निवास नहीं करता। सबों ने बसेरा छोड़ दिया है, केवल उस स्थान से आने वाले सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन फलों का किसी ने भी स्वाद नहीं चाखा है। हे कृष्णा, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम इस सुगंध से अत्यधिक आकर्षित हैं। हे बलराम, चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही है, क्या तुम्हें यह उनकी सुगंध नहीं आ रही? तार फल कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है और उसका खुशबू, उसका सुगंध बहुत मोहक होता है। तो ये ताल वन, ये वृंदावन में जो ताड़ वन था, उस तारवन को अधिकार कर लिया था ये धेनुकासुर, और अपने मित्रों के साथ धेनु या गधे के रूप में वो ये तारवन को तारवन में रहता था और किसी को भी आने नहीं देता वहां, अगर कोई आता तो बस उसको मार डालता। जब बलराम तथा कृष्ण से उनके हंसते हुए घनिष्ठ मित्र ने प्रार्थना की तो वे उन्हें प्रसन्न करके प्रसन्न करने के उद्देश्य से अपने मित्रों के साथ उस वन की ओर चल पड़े। ताल वन में प्रवेश करते ही बलराम अपने हाथी जैसा शक्ति को दिखाने के लिए वृक्षों को हिलाने लगे। इस हचके से सारी पक्के फल पृथ्वी पर आ गिरे। फल गिरने की आवाज सुनकर वहां पर गधे के वेश में बास कर रहा धेनु का सुर उस ओर तेजी से बढ़ने लगा। इससे सारे वृक्ष हिलने लगे मानो भूकंप आया हो। सर्वप्रथम ये असुर बलराम के समक्ष प्रकट हुआ और उनकी छाती पर दुलत्ती चढ़ाने लगा। बलराम पहले कुछ नहीं बोले किंतु वो असुर पुनः तेजी से दुलत्ती चलाने लगा। इस बार बलराम ने तुरंत ही अपने एक हाथ से उस गधे के पैर पकड़कर उसे चारों ओर घुमाकर वृक्ष के चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम उसे घुमा रहे थे तभी असुर के प्राण निकल गए। बलराम ने उसे सबसे ऊंचे तार वृक्ष के ऊपर फेंका। उस असुर का शरीर इतना भारी था कि वो वृक्ष टूटकर अन्य वृक्षों पर गिरा, जिससे अन्य अनेक वृक्ष धराशायी हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस वन में भारी अंगहर आया हो और सारे वृक्ष एक एक करके गिर रहे हो। इस तरह के असामान्य बल का प्रदर्शन विस्मयकारी नहीं है, क्योंकि बलराम अनंत शेषनाग के रूप में श्री भगवान हैं, जो अपने सहस्र सहस्र फनों पर समस्त लोकों का धारण किए हैं। ये संपूर्ण विराट जगत उनके द्वारा उसी प्रकार पालित हैं जिस प्रकार दो धागे कपड़े की बुनाई की धारण किए रहते हैं। जब ये असुर वृक्ष के ऊपर फेंक दिया गया तो धेनुकासुर के सारे मित्र सहयोगी एकत्र हुए और उन्होंने अत्यंत वेग से बलराम तथा कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। वे अपने मित्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेने पर तुले थे, किंतु कृष्ण तथा बलराम हर गधे की पिछले टांगे पकड़कर चारों ओर घुमा देते। इस प्रकार उन सबों का वृक्ष के ऊपर फेंक कर उन्होंने उनका वध कर दिया। गधों की शबों के कारण अत्यंत अद्भुत दृश्य था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विविध रंगों के बादल वृक्ष के ऊपर एकत्र हो रहे हो। इस महान घटना को सुनकर देवतागण स्वर्गलोक से कृष्ण तथा बलराम पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुंदुभियां बजाकर स्तुतियां करने लगे। धेनुकासुर के वध के कुछ दिनों बाद लोग तालवन जाकर फल एकत्र करने लगे और पशु भी निर्भय हो वहां उगी सुंदर घास चरने के लिए आने लगे। कृष्ण तथा बलराम के इस दिव्य कार्य तथा लीलाओं को सुनकर या उनका कीर्तन करके मनुष्य पुण्य अर्जित कर सकता है। जब कृष्ण बलराम तथा उनके साथियों ने वृंदावन ग्राम में प्रवेश किया तो उन्होंने बांसुरी बजाए और बालकों ने वन में उनके असाधारण कार्यों की प्रशंसा की। उनकी मुखमंडल तिलक से सुशोभित थे और गौओं की चरण रज से धूसरित थे। कृष्ण के सिर पर मोर पंख शोभायमान थे। बलराम तथा कृष्ण दोनों ने बंसी बजाई और तरुणी गोपिकाएं कृष्ण को घर लौटते देखने के लिए लालायित हो उठी। वे कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण अत्यंत खिन्न थी। सारे दिन वन में या चरागाह में गौवे चराते कृष्ण का ये चिंतन करते रहती। अतः जब उन्होंने कृष्ण को लौटते देखा तो वे उनके मुख की ओर उसी तरह देख रही थी जिस प्रकार भौर कमल पुष्प पर मंडराते रहते हैं। जब कृष्ण गांव में घुसे तो तरुणी गोपियां मुस्कुराई और हंसी। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए गोपियों के सुंदर हास्यमय मुखरों का सुख लुटा। तदनंतर कृष्ण तथा बलराम का स्वागत उनकी माताओं यशोदा तथा रहिनी ने किया और समय अनुसार वे अपने लडले पुत्र की इच्छाओं में लडले पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति करने लगी। माताओं ने सेवा करने के साथ ही अपने दिव्य पुत्र को आशीष भी दिया। उन्होंने अपने पुत्र को नहलाया और वस्त्र से सज्जित किया। कृष्ण को नीला वस्त्र पहनाया गया और बलराम को पीला और उसके साथ ही उनको सभी प्रकार के आभूषण तथा फूलों की मालाएं दी गई। दिन भर चरागाहों के श्रम की थकान से मुक्त होकर वे दोनों प्रसन्न तथा सुंदर लग रहे थे। उनकी माताओं ने उन्हें सान्निध्य स्वादिष्ट भोजन दिया और उन्होंने बड़े बड़े चाव से सब व्यंजन खाए। फिर उन्हें स्वच्छ बिस्तर पर बैठाकर माताएं उनके कार्यकलापों से संबंधित गीत गाने लगी। जो ही वे बिस्तर पर लेटे कि उन्हें प्रगाढ़ निद्रा आ गई, उस प्रकार कृष्ण तथा बलराम ग्वालों के रूप में वृंदावन के जीवन का आनंद भोगते रहे। कभी कभी कृष्ण अपने बाल सखाओ तथा बलराम के साथ जमुना तट पर गौवे चराने जाते और कभी बलराम के बिना जाते। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हुआ और एक दिन जब सारे बालक तथा खेत में चरती गौवे अत्यंत प्यासी हुई तो वे जाकर जमुना जल पीने लगे, किंतु नदी का जल कालिया नामक विशाल सर्प के विष से जहरीला हो चुका था। चूंकि पानी इतना जहरीला था अतः सारी गौवा तथा बालक जल पीते ही तुरंत प्रभावित हो गए। वे सब जमीन पर गिर पड़े और मृत जैसे लगने लगे। तब समस्त प्राणों के प्राण श्री कृष्ण ने उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली जिससे सारे बालकों तथा गौओं में पुनः चेतना आ गई और वे सब एक दूसरे को अत्यंत विस्मयपूर्वक देखने लगे। वे समझ गए कि जमुना का जल पीने से वे मृत हो गए थे, परंतु कृष्ण के कृपा कटाक्ष से वे सब जीवित हुए हैं। इस प्रकार उन सबों ने जोगेश्वर कृष्ण की योग शक्ति का प्रशंसा की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत धेनुकासुर का वध शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो सब समझ गए हैं धेनुकासुर वध का लीला। हाँ, तो इस सिलसिले में, इस विषय में किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, बलराम केवल विष्णु तत्व नहीं, बलराम विष्णु का श्रोत है।
हाँ,
हाँ, धेनुकासुर एक गंधर्व था, इसको सांप से कारण असुर के रूप में जन्म हुआ और इसके साथ इसका ये सौभाग्य भी मिला कि भगवान के हाथ से उनका मृत्यु हुआ, तो इस कारण उसको वो मुक्त हो गया था। भगवान के द्वारा जिसका वध होता है वो मुक्त हो जाता है। हाँ, हरे कृष्ण। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भगवान जो असुरों को वध कर रहा है, ये असुर वध के पीछे और कोई विशेष दर्शन रह जाता है या विशेष शिक्षा इसके साथ साथ होता है? तो धेनुकासुर वध ये लीला का मतलब क्या है? ये जो वृंदावन में भगवान का लीला हो रहा है ये भी सही है, ये भी हकीकत है। और वैसे और एक विचार से हमारा हृदय भी वृंदावन है, हर व्यक्ति का हृदय भी वृंदावन है, हर व्यक्ति के हृदय में भगवान विराजमान है ना, परमात्मा के रूप में भगवान है। और साथ साथ असुरों भी हैं जो वहां आकर आक्रमण करता है। तो असुरों को क्या है, ये सारे असुरों हमारे सारे अवगुण हैं, जितने सारे कलमश हैं हृदय का वो सारे असुरों हैं। तो धेनुकासुर कौन है? धेनुकासुर है ये हमारा, हम में ये वृत्ति। धेनुक मतलब गधा, गधा का विशेष गुण क्या है? गधा का विशेष गुण है कि वो गधा है। गधा क्या करता है, मतलब गधा का बुद्धि नहीं रहता है, उसका बुद्धि, गधा का बुद्धि एकदम एकदम डिस्टॉर्टेड होता है। जैसे गधा का बुद्धि कैसे होता है कि गधा बहुत भारी माल लेते हैं, भार बहन करते, बहुत भार बहन करते, उसलिए गधा को भारवाही कहा जाता है। तो वैसे हमें भी ये चीज, बल्कि गधा को जरूरत क्या है भार बहनने का? गधा का जरूरत क्या होता है किसका? केवल थोड़ा सा घास, और ये घास हर जगह है, घास का कभी कमी, कहीं भी कमी नहीं है। बल्कि गधा चूंकि वो गधा है तो इसलिए वो सोचता है कि अगर मैं मेरा धोबी का कपड़ा मैं अपना पीठ में, या मेरा मालिक का जो भारी बोझा है उसको हम नहीं बहेंगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए वो दिन भर ऐसे भारी भार बहन करते हैं और दिन के बाद में इतना श्रम करने के पश्चात उसको थोड़ा सा घास मिलता है। और गधा का और एक ये है, वो बिना कोई कारण, बिना किसी कारण वो भार को ये कर लेते हैं, बहते हैं, बहन करता है। और वैसे हम में भी ये वृत्ति कैसी है? एक गधा का वृत्ति तो ये है कि यद्यपि खाना और हमका, हमारा जो कुछ जरूरत है वो सारे वस्तु काफी हर जगह में है, बल्कि मनुष्य ने कभी कभी सोचता है कि मैं अगर सुबह से शाम तक नौकरी नहीं करेंगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा। तो ये दोनों में कुछ सिमिलरिटी है ना। हम अगर ज्यादा भार बहन नहीं करेंगे तो हमको घास नहीं मिलेगा। हम सुबह से शाम तक अगर नौकरी नहीं करेंगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा। ये तो है एक गाधा का वृत्ति। और गाधा का और एक वृत्ति ये है, जैसे धेनु का असुर, ये असुर क्यों है? ताल जो है फल, ये फल कृष्ण और कृष्ण का भक्त ने चाखने का आस्वाद, उसको आस्वादन करने का चाहा था। बल्कि धेनु का असुर क्या बोल रहा है? नहीं मिलेगा। वो किसी को फल नहीं देता था। तो वैसे ही हमारा अपना जो कार्य है उसका फल हम क्या करते, किसी को देते हैं? बोलते यद्यपि वो उसका फल हम खुद नहीं खा सकते हैं, खुद नहीं आस्वादन कर सकते हैं, फिर हम बोलते हैं हम किसी को नहीं देंगे, भगवान को भी नहीं देंगे। भगवान कौन है? भगवान को अगर किसी जरूरत है तो हमारे जैसे कमाने रुपए कमाने दो और उसको भोग करने दो। तो ये है धेनु का सुर का वृत्ति। तो इस वृत्ति को, ये जो गधा का वृत्ति है, इसको दमन, इसको हरण, और इसको निभाते कौन है, इसको फैसला कौन करते हैं? बलराम करते हैं। अधिक से अधिक असुरों को संहार कृष्ण ने किया था, बलराम ने केवल 2-3 असुरों का वध किया था। उनमें से एक है ये धेनु का असुर। बलराम कौन है? बलराम है गुरु तत्व। गुरु क्या शिक्षा देते हैं? तुम जो कार्य करते हो उसका फल किसको देना चाहिए? भगवान को देना चाहिए। ये शिक्षा गुरु देते हैं ना, तुम्हारा जो कार्य का जो फल है वो भगवान को अर्पण करो, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसे ही बलराम, ये जो धेनु का असुर रूपी जो असुर हमारा हृदय में है उसको दमन करते हैं, करके भगवान के प्रति हमें कार्य करने का प्रेरणा देते हैं। तो ये है धेनु का असुर का सिंबॉलिक एक्सप्रेशन विच हैज बीन एक्सप्लेन बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इन ए बुक कॉल्ड श्री कृष्ण संहिता। Is there any question from Nita Chandra? The tree?
The trees which fell down as a result of the
past. There must have been some. There must have been some. अच्छा प्रश्न था बेल्जियम से, रामानंद ने प्रश्न किया, रामानंद राय। रामानंद, हाउ डिड यू लिसन टू दिस क्लास? आई गेव इट इन हिंदी, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड द क्लास? मे बी टुमारो वी कैन टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट द इंग्लिश और फाइंड आउट व्हाट रामानंद हैज टू से। Anyway, he is taking some time, so I can keep answering. So,
wonderful translation.
Who did the translation? Oh, I see. Oh, you had been translating. Okay. I didn't know that. So you have been translating in writing. Wonderful. Thank you, Nita Chandra. Okay. So the trees that fell from due to the falling of Dhenukasura and his friends, the question is, were they also demons? That hasn't been explained, but one thing is easily understandable, that those trees that fell due to the fall of Dhenukasura, because Krishna caused them to fall, they got delivered and they got a spiritual situation. The trees were not demons. The trees were a part of Vrindavan, part of the forest of Vrindavan. They were naturally they are devotees of Krishna. Krishna is saying that all the trees of Vrindavan are the yogis who had been meditating on his lotus feet. But now in Vrindavan they are getting an opportunity to see Krishna and Balaram face to face. Thank you. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Srila Haridas Thakur ki, Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopinath, Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mathura Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Shri Mayapur Navadip Dham ki, Ganga Mai ki, Yamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulasi Maharani ki, Harinam Sankirtan ki, Shamabeto Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanande. All glories to the assembled devotee. All glories to Sri Guru and Sri Gaurango. All glories to Srila Prabhupada. Namam Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sharashati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashchatta Nishtaya. Hare Krishna. Ab Tulsi Aruti Hoga Pone 7 baje se aur 7 baje se